क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवराज सिरतन आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ये बता दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। आज के कार्यक्रम का विषय है अभिमन्यु अनंत और हिंदी। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे मध्य में डॉक्टर लक्ष्मी झमन जी आई हुई हैं, उनका हम भी हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी झमन जी के बारे में दो शब्द। डॉक्टर लक्ष्मी झमन जी इन दिनों महात्मा गांधी संस्थान में वरिष्ठ प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं। आप हिंदी में लेखन से भी जुड़ी हुई हैं। आप हिंदी की सेवा में तन मन धन से लगी हुई हैं। डॉक्टर लक्ष्मी झमन जी, हम सभी को इस बात से गर्व है कि अभिमन्यु अनंत जी हमारे देश के महान साहित्यकार रहे। हिंदी साहित्य को उन्होंने जो योगदान दिए हैं उन पर हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
जी गुरुजी, धन्यवाद। अभिमन्यु अनंत जी का जन्म मॉरिशस के त्रियोले गांव में 9 अगस्त 1937 में हुआ था। उनके पिता पति सिंह और उनकी माता सुभाग्या का जन्म भी मॉरिशस में हुआ था। अनंत जी के दादाजी अनंत सिंह भारत से लाए गए मजदूरों में से एक थे। यह बताना आवश्यक होगा यहाँ कि उनके दादा विद्रोही स्वभाव के थे। मजदूरों को संगठित एवं जागरूक बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। अभिमन्यु जी के पिता के बारे में यह बात बताना आवश्यक है कि वे दयालु स्वभाव के थे और सबसे बड़ी बात कि वे उस समय के पढ़े लिखे लोगों में से थे। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का अच्छा ज्ञान था। वे कई सभाओं के मंत्री भी रह चुके थे और जीवन के अंतिम दिनों तक सामाजिक कार्यों में लगे रहे। उनकी माता आदर्श भारतीय नारी थी जो रामायण का पाठ किया करती थी। कहना ना होगा अभिमन्यु अनंत जी पर इन तीनों का मिश्रित प्रभाव पड़ा है। अनंत जी अपने माता पिता की 11वीं संतान थे। अनंत जी का परिवार प्रारंभ में आर्थिक रूप से कमजोर रहा, अतः उनकी शिक्षा न तो सुचारू रूप से हुई न बहुत अधिक ऊंची डिग्रियां वे प्राप्त कर पाए। वे स्वयं इस बारे में कहते हैं, इस जन्म में तो विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र हासिल करने का अवसर ही नहीं आया। यह बात बिल्कुल सही है कि गलियों में मेरी पढ़ाई हुई, आम आदमी मेरे अपने विश्वविद्यालय के अध्यापक रहे। अपने देश की तत्कालीन स्थितियां और विषम परिस्थितियों ने मेरे भीतर के रचनाकार को जन्म दिया। अनंत जी ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी डरे नहीं, संघर्षों के दौरान ही उन्होंने हिंदी की परिचय परीक्षा पास की और 18 वर्षों तक हिंदी अध्यापन करने के पश्चात वे 3 वर्षों तक हमारे देश के युवा मंत्रालय में नाट्य प्रशिक्षक रहे। इतना ही नहीं, वे महात्मा गांधी संस्थान में रिमझिम और वसंत पत्रिकाओं के संपादक रहे। यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के निदेशक का पद भी संभाला। अनंत जी हमारे देश के बहुत बड़े साहित्यकार हुए। यह बताना आवश्यक है कि उनके व्यक्तित्व पर भारत का प्रभाव रहा। अपनी साहित्यिक प्रेरणा के विषय में वे स्वयं कहते हैं, जो लेखक के रूप में मैंने पाया वही मनुष्य के रूप में भी भारत से पाया। मेरी धमनियों में मॉरिशस दौड़ता है क्योंकि बना तो मैं मॉरिशस की मिट्टी से ही हूँ, लेकिन रोशनी मुझे भारत ने दी। इसलिए मेरे अंग अंग में मॉरिशस के साथ साथ भारत हर वक्त विद्यमान रहता है। शायद यही कारण है कि उनकी रचनाओं के अध्ययन के बाद उनके प्रिय मित्र डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी ने उन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा है।
अभिमन्यु अनंत ने हिंदी साहित्य की कई विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, पर एक उपन्यासकार के रूप में उन्होंने ज्यादा नाम कमाया है। आप कहाँ तक इससे सहमत हैं?
ये तो सच है कि साहित्यकार की सर्जना में उसके युग और युगीन प्रभावों की झलक रहा करती है। युग बोध ही साहित्यकार की प्रमुख प्रेरणा होती है, वह अपने देश और समाज से बच नहीं पाता है। अनंत जी ने भी अपनी जातीय परंपरा के राष्ट्रीय बातों को अपने उपन्यासों में जगह दी है। हमारे देश की भूमि, यहाँ की संस्कृति उनके लेखन का केंद्र है। उन्होंने देश की त्रासदियों का, पाश्चात्य जगत के प्रभाव से आए दुष्प्रभावों का, आधुनिकीकरण के विभिन्न दबावों का यथार्थ चित्रण किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मॉरिशस में अप्रवासी भारतीयों के जीवन के सारे पहलुओं का विश्लेषण उनके उपन्यासों में हुआ है। उनके उपन्यासों में युग चेतना, देश के संस्कारों तथा परिस्थितियों का प्रभाव है। इतना ही नहीं, जीवन मूल्यों तथा आदर्शवाद के साथ साथ उन्होंने प्रेमचंद के समकक्ष जीवन दृष्टि को इन अपने उपन्यासों में दर्शाया है। हमने यह भी देखा है कि उपन्यासकार के रूप में अभिमन्यु अनर्जी का फलक अत्यंत विस्तीर्ण है, इसीलिए तो उन्हें उपन्यास सम्राट और मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। उनका पहला उपन्यास और नदी बहती रहे सन 1970 में प्रकाशित हुआ था। वैसे भी उपन्यास अभिमन्यु अनर्जी की प्रिय विधा रही। अभिमन्यु जी के विचार में इतिहास बड़े लोगों का उपन्यास है और उपन्यास छोटे लोगों का इतिहास है। इस दृष्टि से उन्होंने लाल पसीना, गांधी जी बोले थे एवं पसीना बहता रहा उपन्यासों में अप्रवासी भारतीयों का इतिहास प्रस्तुत किया है। उनका उपन्यास लाल पसीना, उसकी कथावस्तु मॉरिशस में प्रथम भारतीय मजदूरों के आगमन से सन 1900 तक की कहानी है। गांधी जी बोले थे और पसीना बहता रहा में कथानक 1901 से सन 1922 तक के चुनाव तक का है। इन तीनों उपन्यासों में भारतीय मजदूरों एवं उनकी संतानों की व्यथाओं के साथ उनके संगठन विघटन, त्याग, बलिदान, आर्थिक सामाजिक स्थितियों का पर्दाफाश किया गया है। यूं कहें कि इन तीनों उपन्यासों का उद्देश्य मजदूरों को उनका अधिकार दिलाना था। यह कहना बहुत ही आवश्यक है कि अभिमन्यु अनर्त जनपीड़ा एवं जनमुक्ति के साहित्यकार हैं। इसीलिए तो डॉक्टर कमल किशोर गोयनका से एक बातचीत के अंतर्गत उन्होंने यह स्वीकार किया है, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा इतिहास की यातना, उससे उपलब्ध आम आदमी की वह दयनीय स्थिति और उसका उस स्थिति के सामने कभी न टूटने का संकल्प रहा है, इसी ने मुझसे मेरी रचनाएं लिखवाई है। उनका उपन्यास और नदी बहती रही में स्वतंत्रता के बाद मॉरिशस की दशा का चित्रण हुआ है। इसी तरह हड़ताल कब होगी, आंदोलन, मुरिया पहाड़ बोल उठा, जग गया सूरज में मजदूरों की समस्याओं, उनके आंदोलन एवं जागरूक युवा पीढ़ी का चित्रण हुआ है। यही नहीं, मुरिया पहाड़ बोल उठा उपन्यास में मजदूरिन मिल मालिक के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। इतना ही नहीं, मॉक ट्वेन का स्वर्ग उपन्यास में आधुनिक सभ्यता की बाढ़ में बहने वाली जनता के साथ मॉरिशस की भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीयता के बह जाने का चित्रण है। इसी तरह चुन चुन चुनाव, शब्द भंग और फैसला आपका उपन्यासों में राजनीतिक छल छंदों का चित्रण हुआ है। कुहासे का दायरा पर पगडंडी नहीं मरती, चौथा प्राणी और एक बीघा प्यार में ग्रामीण परिवेश का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। लहरों की बेटी में मछुओं के जीवन एवं उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसी तरह अन्य उपन्यासों में अचित्रित, शिफाली, चलती रहो अनुपमा, आसमान अपना आंगन, अपनी अपनी सीमा आदि में मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने की बात पर चित्रण किया गया है। एक सबसे बड़ी बात जो हमें दिखाई देती है वह है उनके उपन्यास अपनी ही तलाश में, जहां उन्होंने नैतिक मूल्यों के पतन की कहानी सुनाई है।
तो आप बता रही थी जैसे कि अभिमन्यु अनर्त जी के उपन्यासों पर आप चर्चा कर रही थी, उनके उपन्यासों की बात हो और लाल पसीना की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता।
जी गुरुजी, आपने सही कहा, लाल पसीना अभिमन्यु अनर्त की कालजयी कृति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस उपन्यास में भारतीय मजदूरों के संघर्षों की कहानी है। लाल पसीना भारतीय अस्मिता, मानव के अधिकारों तथा स्वतंत्रता के लिए भारतीय मजदूरों के संघर्ष का इतिहास है। लाल पसीना का किसान गोरे मालिकों की मजदूरी करते करते मजदूरों को संगठित करता है और एक दिन गोरे सिपाहियों से गोली खाकर अपनी आखिरी सांस लेता है। उसके बाद उसका पुत्र मदन भी मजदूरों के पक्ष में लड़ते लड़ते अंधा बन जाता है और अपने मानस पुत्र प्रकाश को वह यह जिम्मेदारी सौंप देता है। अनंत जी लिखते हैं, अंधे को अगर प्रकाश मिल जाए तो उससे मूल्यवान उसके लिए क्या हो सकता है, और फिर प्रकाश को तो सभी का प्रकाश होना है, और इस तरह उपन्यास में प्रकाश इस कार्य को आगे बढ़ाता है। यूं तो लाल पसीना का एक एक पन्ना भारतीय मजदूरों की पीड़ा से भरा हुआ है, परंतु ये कुछ पंक्तियां हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। लिखा है अभिमन्यु जी ने, इतिहास के पन्नों पर धूल जमती गई और कई पृष्ठों को जला दिया गया, फिर भी कुछ पन्नों को ऐसी स्याही से लिखा गया था जिस पर धूल टिक नहीं पाई। चंद ऐसे भी पन्ने थे जो भारतीय मजदूरों के खून पसीने से कुछ इस तरह भीगे हुए थे कि उन्हें आग न जला सकी, और जो पन्ने जले भी उनकी राख को खाद समझ नियति ने खेतों में बिखेर दिया। इतिहास की बलि का सारा रक्त बहकर खेतों के रक्त से जा मिला, और वह दबोचा हुआ इतिहास परतों के नीचे सांसों के लिए संघर्ष करता रहा, संघर्ष करता रहा।
अनंत जी के उपन्यासों की भाषा पर आप कुछ बता सकती हैं?
अनंत जी के कई उपन्यासों में भाषा के प्रति उनका प्रेम उभर कर सामने आया है। यहाँ हम देखते हैं कि उनका जो उपन्यास है हम प्रवासी, उसमें अपनी भाषा एवं संस्कृति की सुरक्षा में जुटे रहने की भारतीय आप्रवासियों की ललक दर्शनीय है। उन्होंने दुख दर्द सहकर अपनी भाषा, धर्म, रीति रिवाज एवं प्रथा परंपराओं को सहेज कर रखा। इसके बारे में कहना जरूरी है, क्योंकि हम ये न भूलें कि मॉरिशस में आज अगर भारतीय भाषाओं का बोलबाला है तो इसका श्रेय भारतीय आप्रवासियों को ही जाता है। अपने उपन्यासों में अनंत जी ने भोजपुरी, उर्दू, तेलुगु, तमिल तथा कहीं कहीं क्रियोली आदि की शब्द योजना द्वारा देश की बहुभाषिता का परिचय दिया है।
जैसे आप बता रही हैं कि अनंत जी ने अपने उपन्यासों में हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, क्रियोली, फ्रेंच, अंग्रेजी भाषाओं की शब्दावलियों का प्रयोग किया है। मॉरिशस पाठकों के लिए उनकी भाषा का जो मिश्रित रूप है एक बाधक नहीं है, क्योंकि वे सभी भाषाओं की शब्दावलियों को समझ पाते हैं। हाँ, मॉरिशस के बाहर भारत या फिर अन्य देशों के हिंदी पाठकों के लिए एक समस्या बन सकती है, पर अनंत जी ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। जहाँ जहाँ अहिंदी शब्दावलियों का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्होंने उस संदर्भ को समझा दिया है। इस प्रकार से जो अहिंदी भाषी होते हैं, जो विदेशों के जो पाठक होते हैं, वे उस संदर्भ को समझकर और वहाँ पर जो अहिंदी शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है उसको समझ लेते हैं। डॉक्टर झमन जी, इससे पहले आप अनंत जी की कविताओं के बारे में कुछ बता रही थी।
चूंकि अभिमन्यु अनंत जी उपन्यासकार होने के साथ साथ कवि भी थे, तो अपने उपन्यास हम प्रवासी की शुरुआत बड़े काव्यात्मक ढंग से करते हुए वे मजदूरों की पीड़ा का चित्रण इन पंक्तियों में करते हैं। जिसकी इस माटी पर बही थी पहली बूंद पसीने की, जिसने चट्टानों के बीच हरियाली उगाई थी, नंगी पीठों पर सहकर बाँसों की बौछारें बहा बहा कर लाल पसीना, वह पहला गिर मिटिया इस माटी का बेटा, जो मेरा भी अपना था तेरा भी अपना। अभिमन्यु अनंत जी ने मॉरिशस की कविता को नया आयाम दिया, उसे आधुनिक रूप दिया, विद्रोह, मुक्ति एवं मानव कल्याण से जोड़कर उसे वैश्विक रूप प्रदान किया। उनकी कविताओं में भारतवंशी मॉरिशस के मजदूरों की समस्याओं का चित्रण है। उनकी कविता है एक लंबी मृत्यु इतिहास की, जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व प्रवासी भारतीय समाज तथा उसके पश्चात के विविध पक्षों का उन्होंने चित्रण किया है। उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। इस द्वीप के शमशान के रास्ते में दास्ता की प्रथम घड़ी से मेरे कंधे पर वह मेरी ही अर्थी होती है। मैं जो कभी कूली था आज उसकी संतान हूँ, जिसे प्राप्त है विरासत में लंबा इतिहास। यह देखने को मिला है कि उनकी कविताएं मॉरिशस द्वीप को प्रतिबिंबित करती हैं। वर्षों पूर्व जो गिरमिटिया मजदूरों ने किस प्रकार यहाँ पर मॉरिशस की जमीन पर अपनी अस्मिता की तलाश की थी, उसका चित्रण हुआ है। वे लिखते हैं, मेरा देश एक द्वीप है, समंदर में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती रहती है। यह परंपरा इतिहास बनी, फुटक रही हर डाली पर। समंदर और द्वीप के कानून में कोई अंतर नहीं होता। इसी तरह उन्होंने अपनी कविताओं में ऊंच नीच की संकीर्णताओं का विरोध किया है। अपनी आक्रोश कविता में वे कहते हैं, तुम पिघल जाओ, तोड़ दो अपने मौन व्रत को, अपनी जड़ता को, अपने पीछे छिपे अवसरवादियों के हृदयहीन वक्ष को सामने कर दो।
तो प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि थोड़ी देर पहले आप डॉक्टर लक्ष्मी झमन जी को सुन रहे थे। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहा अभिमन्युनत और हिंदी। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मित्र सुनील लक्ष्मण जी का सहयोग रहा। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर लक्ष्मी झमन जी को धन्यवाद देते हैं। अब डॉक्टर देवव्रत श्रीरतन को आगे दीजिए नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।